नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है लाइब्रेरी स्टाफ। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंग जी। आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम लाइब्रेरी स्टाफ।
नमस्कार लर्नर्स, हमने ये मॉड्यूल जो है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका ये सेकेंड लेसन है द स्टाफ। स्टाफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज में, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं जब तक ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं होगा और तब तक आपका काम कैसे चलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जहां पर सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने यूजर्स का सेटिस्फेक्शन जो है वो अपर मोस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे यूजर्स सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं हमारे काम से, हमारी सर्विस से, तो फिर उस लाइब्रेरी का कोई ज्यादा फायदा नहीं माना जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसमें कि लाइब्रेरी भी वन ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। किसी पर्सन को सिलेक्ट करना, स्टाफ का मतलब ही है, अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे कि स्टाफ को सिलेक्ट करना, लोगों को रिक्रूट करना कितना एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि अगर हमारे पास अच्छे लोग होंगे तो काम करने वाले लोग होंगे जिनकी इच्छा हो काम करने की, और अपनी स्किल्स हर समय शार्प रखे, वो लोग नॉलेजेबल हो और बिहेवियर वाइज अच्छे हो। काम तो सभी को करना आता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिहेवियर टुवर्ड्स वर्क, बिहेवियर टुवर्ड्स जॉब। आप कितने अच्छी तरह से बिहेव करते हैं अपने काम को लेकर के, और आप अपने काम को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं आप अपने काम को। ये नहीं समझते कि कोई बात नहीं है, कोई आया है तो नहीं मिला उससे तो क्या फर्क पड़ता है, ये इस तरह का कैलस जो है एटीट्यूड नहीं होना चाहिए स्टाफ का। जहां तक कि हमें यूजर सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे ग्राहक सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी के लिए भी बिजनेस के लिए, उसी तरह से लाइब्रेरी में यूजर सेटिस्फेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे जो ज्यादा चीजें हमें अपने स्टाफ में देखनी है व्हाइल रिक्रूटिंग देम, हमें ये देखना है कि स्किल्स कितनी अच्छी हैं, क्योंकि एक टेक्निकल जॉब है ये सारी, नॉलेज कितना अच्छा है, बिहेवियर पर्सनालिटी क्या है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे हमेशा लगता है वो हर जॉब में है, दैट इज कम्युनिकेशन। हाउ नाइसली यू आर एबल टू कम्युनिकेट एक दूसरे से, आप कितनी अच्छी तरह से, सेम बात मैं भी कहूंगी, सेम बात कोई और भी कहेगा, पता नहीं दूसरे की बात कैसे जल्दी समझ आएगी, शायद मेरी नहीं, ये मतलब कम्युनिकेशन में हेरफेर होता है बोलने में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स लाइब्रेरी में काम करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जब हम अपने स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, ये चीजों का हर किसी को ध्यान रखना पड़ता है, लाइब्रेरी में जरूरी है। लाइब्रेरी अलग अलग तरह की है, आपने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में देखा है, सुना है, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं, या नेशनल लाइब्रेरी, कितनी तरह की लाइब्रेरीज हैं। अगर आप देखेंगे जो हमें स्टाफ का सिलेक्शन करना है वहां भी डेफिनेटली अलग अलग रहेगा। अगर हम कहेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में तो एक पूरा बिल्डिंग ही उनकी होती, पूरा डिपार्टमेंट होता है, वहां पर आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, वहां बीलिब एमलिब ये सब या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर के, तो उनकी रिक्वायरमेंट एकदम अलग है, उनको प्रोफेसर लेवल के लोग भी रखने हैं, और जो लाइब्रेरी को चलाएंगे वो पूरा एक समझ लीजिए कॉलेज की तरह उनका एक डिपार्टमेंट चलता है, तो वहां की रिक्वायरमेंट्स वहां के हिसाब से, वहां की क्वालिफिकेशंस वहां के हिसाब से होंगी। ये सब चीजों को बहुत इम्पोर्टेंट है देखना। उसके बाद अगर हम कहेंगे स्कूल लाइब्रेरी में, हमें स्कूल लाइब्रेरी की चीजें हैं कम इम्पोर्टेंट नहीं है, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में है, पर बच्चे छोटे होते हैं, स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है वहां पर, और हमें बहुत डेलिकेटली उन बच्चों के लिए काम करना पड़ता है, खुद ज्यादा काम करना पड़ता है, ताकि क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं, तो स्कूल लाइब्रेरी की जो रिक्वायरमेंट है हमें वहां पर देखना पड़ेगा, जिस स्टाफ को हम रिक्रूट कर रहे हैं उनके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या, वो बच्चों को हैंडल कर पाएंगे, कितने अच्छे से प्यार से वो करेंगे, उन्हें हैंडल करेंगे, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम रिक्रूट कर रहे हैं। और रिक्रूटमेंट के कितने सारे तरीके हैं, स्टेप्स हैं, वो हमने पिछली बार आपसे बात की, पर मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन में बताऊंगी। हम प्रोफेशनल्स रिक्रूट करते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स भी रिक्रूट करते हैं, और सपोर्ट स्टाफ भी होता है हर लाइब्रेरी में, क्योंकि आपको टेक्निकलिटीज के लिए टेक्निकल स्टाफ तो चाहिए होता है, आईसीटी के लिए आपको बंदे चाहिए होते हैं, या फिर आपको जो नीचे काम करने के लिए होते हैं, साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैनेज करने के लिए सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए होता है, जो भी मैंने पहले बताया कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज उन्हें अपॉइंट करती हैं कभी कभी, छोटी लाइब्रेरीज बस पार्ट टाइम या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो होता वही उन्हें सपोर्ट करते हैं। और इन सबको हम ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए हमारे क्या स्टेप्स हैं, हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं। पहले हम एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और वहां से जो हमें एप्लीकेशन आते हैं उनकी शॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन किस बेस पे हो सकता है, कभी रिटन एग्जाम भी हो जाता है किसी लोअर लेवल में, कभी पर्सनल इंटरव्यू भी होता है हायर लेवल्स में, पीपीटी से भी का, या कोई उनका अपना पर्सनल पर्टिकुलर फील्ड होगी उस पर उन्होंने काम किया होगा वो बताएंगे। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हैं जिन तरीकों से हम रिक्रूट करते हैं। उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट एंड इंडक्शन हो जाता है। हमने जिसे रिक्रूट किया, जिसे हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया, उसके लिए एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है और अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, फिर उसके बाद हम इंडक्शन देते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कैसी है, किससे डील करती है, ये तो वैसे आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट, तो ये सब आपको कुछ पता होती, मगर बारीकी में नहीं मालूम होता आपको कि अंदर कैसे काम हो रहा है। हर लाइब्रेरी में देखा जाए तो है वही छह चीजें, एक्विजिशन है, सर्कुलेशन है, कैटलॉगिंग है या सीरियल्स है, ये सब हर जगह, पर हर लाइब्रेरी का अपने काम करने का तरीका, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी अलग होती है और उनका जो क्लाइंट ग्रुप है वो भी अलग अलग होता है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंडक्शन देना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम उन्हें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाते हैं कि आपने जो ज्वाइन किया है इस जगह पे, आपका क्या रोल है, हम आपसे क्या चाहते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे रहेंगी, आप किस फील्ड में, अगर हमने आपको कलेक्शन डेवलपमेंट में डाला तो आपको ये देखना है कि किस तरह का कलेक्शन मैं डेवलप कर रहा हूँ, किन लोगों को मुझे अपनी कमेटी में रखना है, बुलाना है, या किन से मुझे रिक्वेस्ट लेनी है ताकि मेरा जो कलेक्शन है अच्छे से डेवलप हो जाए। फिर कई लोगों को टेक्निकल प्रोसेसिंग में दे देते हैं, कैटलॉगिंग हो गया उसमें और क्लासिफिकेशन हो गया, सर्कुलेशन में या स्टॉक रूम होते हैं, मेंटेनेंस है, रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हैं, ऑफिस मैनेजमेंट है, ये सारे ही हैं जहां पर हम लोगों को लाइब्रेरी में डिफरेंट लोगों को जॉब्स दी जाती हैं। ये इंटरचेंजेबल भी होती हैं, पर इन सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलग अलग तरह की होती है। अभी जो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के लिए भी आप देखेंगे, हमारे लिए तो लाइब्रेरी एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है और यूजर जो है आपका सबसे बड़ा कस्टमर है और उसको आपको हैंडल करना है बहुत ही तरीके से ताकि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम लेवल तक हो। आपको चाहे कुछ भी करना पड़े उनके लिए, 10 बार ही काम करना पड़े, बट यू हैव टू डू इट, आपके उनका सेटिस्फेक्शन लेवल काफी मैटर करता है। इवन द हाउसकीपिंग में अगर आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग अगर आपकी बहुत ढंग से नहीं हुई होगी, तरीके से नहीं फाइलिंग हुई होगी, तो वो आपका रिफ्लेक्ट कहां करेगा, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन का मतलब है कि बहुत सारे लोगों से मिलना, बात करना, उनको बुक्स देना और अलग अलग तरह के यूजर्स को हैंडल करना। कभी कभी यूजर्स इस तरह के भी होते हैं कि उनका जान पहचान है, कोई रेफरेंस बुक है, कोई बोलेगा नहीं मुझे ये चाहिए, आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मतलब छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। कई लोग बोलते नहीं जी मुझे लाइब्रेरियन जानते हैं, आप मुझे दे दीजिए, तो आपको एक तरीका बनाना है, ढूंढना है, ना उसे नाराज करना और जो आपके रूल्स हैं उनको भी लेके चलना है। ये सब क्योंकि लाइब्रेरी में सर्विस बेस्ड इंस्टीट्यूशन है तो ये सब चीजें आपको तरीके से आनी चाहिए, हैंडल करना सभी लोगों को, और हर यूनिट में लोगों को अलग अलग तरह के टेम्परामेंट जो होते हैं, कभी कभी पेशेंस लूज करते हैं, बट यू शुड ऑलवेज बी एबल टू मैनेज देम। सबको आपको तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। ये हमारा जो था रिक्वायरमेंट कि किस तरह से हम स्टाफ। अब जो हम आज जो मैं आपको आगे जो पढ़ाऊंगी वो परफॉर्मेंस अप्रेजल से पढ़ाऊंगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल का आपको मालूम है, पता है क्या है उसका, जो आपने काम किया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम खुद भी भरते हैं अपने, मैंने क्या काम किया है पूरा साल भर, और फिर मेरे परफॉर्मेंस को मेरा जो सीनियर होगा वो उसे अप्रूव करेगा, डिसअप्रूव करेगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी का जो काम है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। और इसमें आप देखेंगे सर्कुलेशन है तो बुक्स इश्यू रिटर्न, पर वहां की जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कैसे आप सॉल्व करते हैं, उनमें आपको कितनी कम प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को कहीं डिक्रीज तो नहीं कर रहा है, आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, इसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल को रखा जाता है। वहां पर कम्युनिकेशन भी देखी जाती है, वहां आपकी देखा जाता है कि आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं अपने यूजर्स को हर स्टेज पे। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो हर लेवल के लोगों के लिए होता है, और इसे पीरियोडिकली असेस किया जाता है, जैसे कि हमने तीन में कई जगहों पे 3 महीने 6 महीने में देख लेते हैं कि कैसी एफिशिएंसी आ रही है, और अगर हमें कभी ऐसा लग रहा है कि एफिशिएंसी में कोई कमी है तो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि किस वजह से कमी हो रही है, और बंदे जो काम कर रहा है वहां पर उसे ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, उसे हमारी मदद की जरूरत है क्या। तो उस तरह से जब हम उन्हें उन चीजों के लिए तैयार करते हैं उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो एफिशिएंसी हमें हमारे लिए ये जो असेसमेंट है ये इसलिए भी जरूरी है, खाली आपको इसके लिए नहीं कि आप मैक्सिमम लाइब्रेरी का ही काम कर रहे हैं और आपके यूजर्स, पर आपके जो फर्दर ग्रोथ है वो भी देखना चाहते हैं, उसमें भी ये मदद करेगा आपको। परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें ये पता चलेगा कि आपकी एक्टिविटी में क्या क्या चीजें हैं, आपने क्या काम को किस तरह से हैंडल किया, और आप अगर आगे जाते हैं तो किस लेवल का काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मतलब देखा जाए टैंजिबल हैं, गिनी जाती हैं। कुछ काम इसमें से ऐसे हैं जो काउंटेड होते हैं, आपको पता चलेगा दिन में कितना सर्कुलेशन हुआ है, कितनी कैटलॉगिंग हुई है। अब तो सारे सॉफ्टवेयर्स के बेस पे ये सब होता है, तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को से मेजर करते हैं एफिशिएंसी को एक एम्प्लॉय की, ताकि जो रूल्स जो उसकी ड्यूटीज हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो देखी जाए, जो हमने इसे असाइन किया है वो हम ऑप्टिमल लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक आपकी परफॉर्मेंस जो एफिशिएंसी है वो ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। और इन केस नहीं ला पा रहे हैं तो हमें इसमें हमारी कहां पर कमी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होंगे इश्यूज, जैसे आपका काम कहीं ना कहीं अटक रहा है या आपका एटीट्यूड नहीं है करने का काम, तो ये दोनों चीजें हमें देखनी पड़ती, जिसकी वजह से जो काम है एफिशिएंसी से आगे बढ़ता रहता है और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी तरक्की होती रहती है। लाइब्रेरी का जो काम यूजुअली है क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है, उसमें वही जो मैंने आपको बता रही थी कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाई किए हैं आज, ये काउंटेड होता है। ये आप सॉफ्टवेयर्स में तो आपका टाइम लिमिट से भी पता चल जाता है आपने कितने घंटे वहां पर काम किया, वो सारे अपनी रिपोर्ट्स में दिखा देता है, या बुक शेल्ड हुई या कितनी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है इश्यू हुई, और बहुत सारी इस तरह की जो है जो हम क्वांटिटी से मेजर कर लेते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है खाली क्वांटिटी नहीं देख सकते हैं, हमें क्वालिटी भी देखना है काम को। क्वालिटी जो है उसको असेस करना एक अलग तरीके से है, उसमें हम काउंटिंग यानी कि 20 किताबें आज एक्सेशन हुई या 100 किताबें एक्सेशन हुई, इसमें हमने क्वालिटी जो है वो किस तरह की रही, कितनी गलतियां तो नहीं हुई उसमें, या उसकी नेक्स्ट जो स्टेप्स थे काम करने के लिए उसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई, वो सब चीजें हमें इसमें देखना पड़ता है। ये खाली देखा जाए मतलब इंट्रिकेट या कोई मुश्किल कामों के लिए ही नहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हर काम के लिए है, चाहे आसान से आसान काम है या मुश्किल से मुश्किल काम है, क्योंकि हमें आसान काम को भी जब रेगुलरली करना होता है उसमें बोरियत भी हो जाती है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजें जो है हम ध्यान में रखते हैं, देखते हैं हमारे जूनियर्स किस तरह से, किस वजह से अगर कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखेंगे सर्विसेज में भी बहुत बदलाव आ गया है। अगर हम उस बदलाव से अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो हमारे यूजर सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा टू मैक्सिमम लेवल, वो यूजर सेटिस्फेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ कि हमने रिक्रूट किया, इंडक्शन किया, आपको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी, आपने ज्वाइन किया, आपने काम किया, उसके बाद हम देखते हैं आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। हम आपको एसेस करते हैं कि किस तरह से, हम भी एसेस होते हैं कि किस तरह से हम काम करते हैं, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टाफिंग में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप देखेंगे स्टाफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे जो है हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर आज से हम 15 साल 10 साल पहले जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे थे, अगर मुझे नए सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता चल रहा, उसकी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है या मैं एक्सपोज नहीं हो पा रही हूँ उन चीजों को, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ या मेरा सीनियर मुझे उन चीजों का एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, हम अपने उस छोटे से दायरे से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इसका मतलब जो है ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहती है स्टाफ के लिए पीरियोडिकली, चाहे उसमें हमने थोड़ा सीखा, ज्यादा सीखा, रिपीट हुआ, कुछ भी चीज, पर ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है हर जगह हर लेवल पे, ताकि हम अपनी जो नॉलेज को है वो प्रोफेशनल नॉलेज को अपडेटेड रखें, अपनी टेक्नोलॉजीज जो हैं, टेक्निक्स जो हैं, टेक्निक्स को भी अपडेटेड रखें। अगर पहले मुझसे कोई किताब मांगी जाती थी तो मुझे ये देखना पड़ता था क्लासिफिकेशन कैटलॉग में जाकर के, हाँ अब मेरे पास जब वेब ओपैक है वो जो इंसान, मैं उन्हें बोल सकती हूँ कि आप अपनी टेबल पर बैठ के ही देख लीजिए, आपके टेबल पे ही पता चल जाएगा, आप हमारे वेब ओपैक में जाइए जो आपका लाइब्रेरी का कॉर्नर है, आपको वहीं पे बैठ के पता चल जाएगा कि आपके पास ये किताब है या नहीं है, इश्यू है या नहीं है, या इसका क्या स्टेटस है। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड। ये हर एरिया में रिलेवेंट है, चाहे आप एक्विजिशन की बात करेंगे, क्योंकि आप देखिए अगर हमारे, हम जो पिछले 2 सालों से 1.5 साल से व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इज दैट कोविड पीरियड, जिसमें हम सब लोगों की लाइफ कुछ हद तक, काफी हद तक बदल गई है। हम लोगों में से कोई भी लाइब्रेरी नहीं आ पा रहे थे और रिक्वायरमेंट्स वैसी ही थी, वर्क फ्रॉम होम है, और आपको जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें भी काम करना है, या जो लोग घर से बैठ के प्रोजेक्ट पे काम करें, तो सर्च तो उतनी ही है, काम तो उतना ही है, बट आपको जो है आपकी एटीट्यूड में, आपके डेवलपमेंट में ये होना चाहिए कि आप उससे कैसे जूझेंगे, आप उसको कैसे ओवरकम कर पाएंगे। आप लाइब्रेरी नहीं है, किताब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म, ऐसा नहीं हो सकता है। सो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो वर्ल्ड वाइड जिस तरह की एफिशिएंसी से काम हो रहा है आप उसके बराबर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और अपने यूजर्स को बराबर लेवल का हेल्प कर पाते हैं सर्चिंग में, रेफरेंस वर्क में, रेफरल वर्क में, आप हर जगह पे उनकी मदद कर पा रहे हैं। किसी भी तरह की पोजीशन हो आपकी लाइब्रेरी में, ट्रेनिंग जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा नहीं होता, फिर भी खुद ना ट्रेनिंग करा के कहीं बाहर भेज देते हैं, दो दिन के लिए, पांच दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, कि आप ट्रेन होकर के आ जाइए। आप देख लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सब लोगों को इकट्ठा करके 100-200 लोगों को ट्रेनिंग देती रहती है नई चीजों के लिए, या आपको भी कोई वेबिनार में देखते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वहां पर देखते हैं, तो वो सब डेवलपमेंट ही है, स्टाफ की ट्रेनिंग ही होती रहती है। उससे आपको न्यू टर्म्स पता चल जाती है, न्यू नॉलेज आ जाती है आपको, सो दैट यू आर एबल टू मैनेज इट फर्दर। इन हाउस ट्रेनिंग जो है नेसेसरी है आपकी एम्प्लॉयज के लिए, ताकि जो नए एम्प्लॉयज आए हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट में ब्लेंड करने के लिए वो आपके जैसा काम करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम करना चाहती है उस तरह से करें, तो इसलिए आप एक इनहाउस ट्रेनिंग भी जरूर करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी यहां पर काम कर रहे होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, वो उस केस में अपने जूनियर्स को ट्रेन करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, जॉब्स असाइन करते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का एक्सपोजर उनको दे दिया जाता है। और इस केस में जैसे अब अभी आप किसी लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं और आपने कैटलॉगिंग में 6 महीने या 1 साल काम किया और इसके बाद आपको एक्विजिशन में डाला गया है, तो आपको एक्विजिशन के सारे स्टेप्स नहीं मालूम हो सकते, तो उस केस में आपको जो वहां पर सीनियर पर्सन होंगे वो आपको कुछ दिन की ट्रेनिंग देंगे, आपको सिखाएंगे, ताकि आप बहुत आराम से उस फील्ड में जा करके काम कर सकते हैं। जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स हैं, न्यू टेक्निक्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो भी हर इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करनी पड़ती है, वो सारी हम आपके सीनियर्स लेके आते हैं और अपने जूनियर्स से शेयर करते हैं और अपनी ट्रेनिंग्स और स्किल्स से अपडेट करके फास्ट अपने फील्ड्स को अपडेट रखते हैं। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब वर्कशॉप से, सेमिनार से, कॉन्फ्रेंसेस से ऑर्गेनाइज की जाती है, नेशनल, इंटरनेशनल। अभी फिजिकली अगर नहीं भी हो रही है पर फिर भी वेबिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, जिससे कि आपको नई डेवलपमेंट के बारे में पता चलता रहता है। हर लेवल के स्टाफ को आपको इंटरेक्ट करना, एक्सचेंज आइडियाज करना, और आप देखते हैं आप चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो, जब आप किसी और का सुनते हैं, चाहे आप वेबिनार में बैठे हैं, दूसरे किसी कुलीग के बारे में बोलते हुए सुनते हैं, तो आपको कुछ न कुछ चीजें उसमें से अलग नजर आती हैं, या आप जब बात करते हैं तो लोगों को भी आपकी कुछ बातें अलग नजर आती हैं, क्योंकि आपने कुछ और पढ़ा होगा, उन्होंने कुछ और पढ़ा होगा, तो इस तरह से जो हमें एक्सपोजर मिलता है स्टाफ को वो अलग होता है, और जो पॉलिसीज होती हैं लाइब्रेरीज की वो हम ऐसे फर्दर डेलीगेट करते रहते हैं कि इस डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी है, आज आप यहां पर ट्रांसफर हो गए, तो ट्रेनिंग से आपको इन चीजों को एक्सपोजर मिल जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जो हैं वो भी इस सबसे, जब हम एक दूसरे से मिलके बात करते हैं या ट्रेनिंग में बात करते हैं, उस तरह से जो एक बैरियर होता है एक दूसरे से बात करने का, वो भी हट जाता है। अभी जो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहे थे, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि आपको जो सीनियर्स से वो ट्रेन करते हैं जूनियर्स को, या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जब आप ट्रांसफर होते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ दिन के लिए बताया जाता है। इन सब चीजों से क्या हो जाता है कि जो साइकोलॉजिकल, जो आपको किसी से मिलने की जरा सी हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं मिलेंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, और ये सब जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो इससे भी परफॉर्मेंस में डेफिनेटली बहुत फर्क आ जाता है। आपको एक साइकोलॉजिकली यू फील अपलिफ्टेड, आपको अच्छा लगने लग जाता है, बात करना अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील करते हैं, और स्किल्स जो है कम्युनिकेशन की, पर्सनल रिलेशंस की, ये सब बढ़ते हैं। अगर आप यूजुअली देखेंगे जब भी हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जिन लोगों को हम कभी भी नहीं जानते होते हैं, जब हम वहां मिलते हैं या अपने ऑफिस के लोगों के साथ ही जाते हैं, तो वहां जो हम मिलते हैं वो एक अलग एक्सपोजर होता है। उसके बाद हमारे पर्सनल रिलेशंस भी उससे बनते हैं, वन टू वन भी हो जाते हैं हम उसमें, और काफी मोटिवेटेड भी फील करते हैं, सो दैट वे यू कैन इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। दैट वे। ये आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सर। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो है हमें डिस्कस द नीड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्यों वे परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी लाइब्रेरी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों है? अगर आपने रिक्रूट किया, आप काम कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या होना है, ये पूछ रहे हैं वो। पर वो कहते हैं एक लाइब्रेरी का, हर किसी लाइब्रेरी का जो है एक अपना स्टैंडर्ड होता है। चाहे आप जाए, मैं जाऊं, कोई और जाए, या आज मैं 5 साल के लिए यहां हूं या 2 साल के लिए कोई और आ रहा है, इस तरह से उनके स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं आता है। वो स्टैंडर्ड उनका वैसे का वैसा ही रहता है। अगर हम उसमें फिट इन नहीं हो पाते, वो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी उसको मेंटेन रखने के लिए वो जो स्टाफ होते हैं वहां पर उसका पीरियोडिकली एसेस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको असेसमेंट में ये पता चल जाता है कि कहीं शॉर्टफॉल है, कहीं एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है, कहीं ठीक से नहीं हो पाता है, तो आप उस स्टाफ के लिए एक स्पेशल अटेंशन देंगे उनके स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए। उससे क्या होता है, उससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टैंडर्ड कभी भी नीचे नहीं आता। जैसे हम लोगों को कभी कभी कहते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं, ये सिग्मा स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं। उसके हिसाब से अपने स्टाफ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बराबर रखने के लिए वी कीप ऑन हैविंग असेसमेंट्स ऑन इंटरवल्स। बीच बीच में हम देखते रहते हैं कि कैसा असेसमेंट हो रहा है, कहीं फॉल बैक तो नहीं हो रहा है, कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो हम उस हिसाब से उसको फिट इन करते हैं, ट्रेन करते हैं, अटेंशन देते हैं। ये वो सवाल हो गया। फिर है पर्पस ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, क्यों करते हैं स्टाफ ट्रेनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्टाफ ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बता रही थी, नई चीजें, नई सॉफ्टवेयर्स आए हैं मार्केट में, अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप ट्रेन नहीं होंगे प्रोफेशनली, तो आप कैसे बता पाएंगे नई चीजें, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह की चेंजेस आ रहे हैं। तो ये आपको चीजें तभी पता चल जाती है जब आपको एक्सपोजर हो जाता है, चाहे वर्कशॉप में आप गए या किसी ट्रेनिंग में गए हैं। तो आपका जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होगा वो तभी होगा जब आपको हमेशा कुछ न कुछ ऐड करने को मिलेगा। आपकी एक पढ़ाई अलग से होती है और जब हम काम करते उसमें ट्रेनिंग करना, और जो लाइब्रेरी प्रोफेशन में उसमें ट्रेनिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। डिग्री के से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें आपका ट्रेनिंग करना, और बाकी सब जगहों में भी ट्रेनिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता जॉब में। इट गिव्स यू लॉट ऑफ आई थिंक कॉन्फिडेंस ऑल्सो, ताकि क्योंकि आपने हैंड्स ऑन काम किया होता और आपने उन चीजों को देख लिया हो, तो जो आपको बैठ के काम करना है, आपने खाली बोर्ड पे पढ़ा नहीं, उसे किताब में नहीं पढ़ा, आपने उसे हाथों से देखा जब आप ट्रेनिंग करते, तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा है हमारा सवाल, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, किस अलग अलग तरह की स्टाफ ट्रेनिंग क्या होती है। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सर्विस में ट्रेनिंग होती है कई एम्प्लॉयज की होती है, जो जैसे मैं कह रही थी वर्कशॉप, सेमिनार, ये सब इन सर्विस हो जाती, या हम जब अपने आप को, सपोज मैंने बीलिप किया और मैं अपने आप को आगे बढ़ना चाहती हूँ, आज मैं एमलिप करना चाहती हूँ, फिर मैं कल को पीएचडी करना चाहती हूँ, हायर क्वालिफिकेशंस जाना चाहती हूँ, हायर लेवल्स पे चाहती हूँ, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फायदा रहता है। जो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, मीटिंग्स में, इन सब में जहां भी एक्सपोजर मिलता है, ये हैं सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। चाहे आप प्रोफेशनली पढ़ाई कर रहे हैं, या आपको इन हाउस ट्रेनिंग मिल रही है, आप कहीं वर्कशॉप पे जा रहे हैं, या कहीं मीटिंग में आप रह रहे हैं, या आप 10 लोगों से मिलकर कोई प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं, ये सब तरीके हैं आपको ट्रेनिंग देने के। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है सैलरी एंड बेनिफिट्स। स्टाफ में ये रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस के बाद इस सब के लिए हमें सैलरी मिलती है। सैलरी वो होती है जो आपको मंथ एंड पे, एक पर्टिकुलर पीरियड है जो है 30 डेज का, एक मंथ का है, उसके बाद आपको किस तरह से पे होते हैं। लाइब्रेरी स्टाफ का भी जो है पेमेंट्स है, वो उनकी जिस तरह की पोजीशन है और जिस तरह की क्वालिफिकेशन है, जैसे स्किल्स हैं हर तरह के, लाइब्रेरी के साइज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कितनी पोजीशंस है आपकी लाइब्रेरी में। आप प्रोफेसर को एक छोटी सी लाइब्रेरी के लिए तो रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो छोटी सी लाइब्रेरी है उनके स्किल्स अपनी तरह के हैं, और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन सब कुछ अलग अलग है। तो सैलरी में क्या है, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस, टोटल सैलरी, टोटल एनुमरेशन, डिनोमिनेशन हो जाता है. सैलरी स्केल्स ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग. सैलरी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ योर सर्विस मेरिट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. कभी कभी प्राइवेट में क्या हो जाता है, आपको मैं जो लेंथ ऑफ सर्विस है आपका हर साल जो आपको बढ़ते रहते हैं पैसे, वो उससे भी फायदा होता है. या अगर मैंने 5 साल एक जगह काम किया और मैं कहीं और गई तो कहा जाएगा मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसको मिला के मुझे नेक्स्ट स्टेप की सैलरी दी जाएगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 5 सालों का एक्सपीरियंस है. उसके अलावा भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्रिंज बेनिफिट्स देते हैं, एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस देती हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देते हैं, बोनस देते हैं, कन्वेंस देते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स देते हैं या मॉनेटरी रिवार्ड्स भी रखते हैं. ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग एक तरीका होता है वो किस तरह से किसे पे करते हैं. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का तो एक पर्टिकुलर वे है, रोल स्केल्स हैं और जो भी है एक सेट स्ट्रक्चर है उसी में ही आपको मिलेगा. और अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, कहीं पर इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं वहां पर आपको अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर वर्क परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं. इसके बाद जो इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो है ऑफिस मैनेजमेंट. हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ऑफिस मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते. जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस यूनिट्स जो है वो जनरल मेंटेनेंस और फिजिकल प्रमाइसेस के लिए आपको हेल्पफुल रहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. आप अगर मैनेजमेंट, अगर लाइब्रेरी छोटी सी है तो वो आपका ये काम आपका मेन ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस यूनिट्स हैं, वो ही करेंगे आपका. और अगर आपका कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको परचेज सप्लाई के लिए या पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, वॉच एंड वॉट के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनके लिए अलग अलग लोगों को रखा जाता है. मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही अलग हो जाती है. वो सब जो काम करते हैं, कंट्रोल उनका जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, अकाउंट्स, ये सब इनके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं, सेक्शन ऑफिसर तक के या सेक्शन ऑफिसर से नीचे भी होते हैं इनके अंडर लोग. अल्टीमेटली ये सब या तो चीफ लाइब्रेरियन हो, अगर वो लाइब्रेरी खाली हेड है और उसके अंडर ये सब काम कर रहे हैं तो एक चीफ लाइब्रेरियन भी हो सकता है, या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हेड होगा उसमें ये एक यूनिट होगी, जिस यूनिट के अंडर आपके फाइनेंस के हेड होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होंगे, उसके अंडर भी बहुत सारे लोग काम करेंगे. इस तरह से ऑफिस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है हर लाइब्रेरी के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, अकॉर्डिंगली उनको बनाना पड़ता है अपना. अब अगर हम देखा जाए, हमने इस लेसन में अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने आपको क्या बताया, इस लेसन में हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने कही वो है ह्यूमन रिसोर्स जो है मोस्ट वैल्यूएबल है रिसोर्स है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिसोर्सेज को टैंजिबल बनाना, मतलब अगर मैंने किताबें खरीदी हैं लाइब्रेरी में अपने यूजर्स के लिए, अगर इसको तरीके से, इसकी टेक्निकल प्रोसेसिंग नहीं होगी, इसका जो हर स्टेप है इसको फॉलोअप नहीं किया जाएगा, तो जो है इसका सर्कुलेशन में आकर के इसकी आउटपुट जो होगी वो सही नहीं होगी. अगर ये डे वन से हर स्टेप के थ्रू जाएगी, जो मैं ये कह रही थी ह्यूमन रिसोर्सेज कितने इम्पोर्टेंट है, अगर वो सही से काम करेंगे तो आउट प्रोडक्ट जो होगा, जो ये किताब लेके जाएगा या जो इन्फॉर्मेशन एंड पे मैं किसी को दे दूंगी वो टैंजिबल हो जाएगी. वो आपको लगेगा कि दैट यू आर पेड फॉर दिस व्हाट यू हैव डन. अगर आपने किसी को रिसर्च में हेल्प कर दी या किसी को किसी प्रोजेक्ट में काम कर दी, उनका काम हो गया, मींस योर वर्क इज डन टू द मैक्सिमम. सो ह्यूमन रिसोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज. स्टाफिंग में जो है मैन पावर स्ट्रेंथ जो हर जगह है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जिसे कह सकते हैं उनकी जान जो है वो स्टाफ में अच्छी मैन पावर रखना, स्ट्रांग मैन पावर रखना. और कितनी लेवल पे है हमारे जो हम रिक्रूट करते हैं वो है टॉप, मिडिल और लोअर. तीन में, तीनों तरह के, हर जगह में तीन तरह, चाहे वो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी से छोटी हो, तीन तरह के लेवल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो है प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल और सपोर्टिंग स्टाफ। जो स्टाफिंग में हमने बताया आपको क्या क्या है, प्लान करते हैं, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इंडक्शन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं डिफरेंट पोजिशंस के, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल और डेवलपमेंट दैट कंटिन्यूज विथ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये सारे स्टेप्स हैं हमारी मैन पावर को जब हम रिक्रूट करते हैं उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे पास, इंडक्शन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस तरह से, और उसके बाद ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारा लेसन कंप्लीट हो गया है आपका स्टाफिंग का। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस।